हरे कृष्णा। महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे महाराज ने जो प्रवचन दिया उसमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हो चुके हैं वैसे ऑलरेडी। सो महाराज की एक्सपर्टीज, महाराज जानते हैं हमारे हृदय में क्या क्या चल रहा है। सो महाराज जी, महाराज मोस्टली आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, पर जो एक दो सवाल जो पर्टिकुलर बड़े हैं कुछ, वो हम महाराज से पूछ लेते हैं। जैसे कि एक सवाल है, ये लीलाकांत प्रभु सचिपति प्रभु से है। और ये प्रश्न है, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव जी, kindly explain first meeting with Srila Prabhupada of yours. Srila Prabhupada ji se aap pehli baar mile the to kya hua tha?
Main Prabhupada ji ko mila tha pehli baar June 1st 1968 Montreal, Canada mein. Mere khayal se ab mujhe kai unhe jada bhi nahi liya tha. कई मेरे ख्याल से अपने प्रीवियस बॉडीज में थे और मुझे पहली सेवा दी थी। प्रभुपाद जी आने वाले थे अगले दिन, सोमवार को प्रभुपाद जी आए थे, तो इतवार को और शनिचरवार मुझे ये सेवा दी थी मंदिर वालों ने, मंदिर के प्रेसिडेंट ने, सफा करो प्रभुपाद जी का घर। तो हम दो दिन किराए का मकान था, तीन कमरे का, 420 प्रिंस आथर सड़क पर, मैकेली यूनिवर्सिटी के पास ही। तो मैं प्रभुपाद जी को June 1st को मिला था। वो प्रभुपाद जी का एक ही संदेश था, कृष्ण भक्ति को लो। प्रभुपाद जी को बड़ा दुख होता था देखकर कि हम भारतवासी इतनी गंभीरता से इस शिक्षा को नहीं ले रहे। जैसे आप जानते हो, विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया भारत में प्रचार करने के लिए, और उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, लीग ऑफ डिवोटीज, पर जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। फिर प्रभुपाद जी विदेश गए, विदेशों में उन्होंने कृष्ण भक्ति की स्थापना की, पहले केंद्र खोले अमेरिका में, कनाडा में, फिर यूरोप में। फिर प्रभुपाद जी ने सोचा अब मुझे भारत लौटने दो और अपने 100 विदेशी शिष्यों के साथ प्रभुपाद भारत में आए 1972 में। जब भारत में आए तो ये पहली बार इतिहास में भारतीयों ने देखा विदेशियों को तिलक के साथ और साड़ी में, धोती कुर्ते में। लोग बड़े प्रभावित हुए और हंसते हंसते जुड़ने लगे। तो प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी। हाँ, आगे
अगला सवाल है कि गोपाल जी के विग्रह के साथ श्रीमती राधा रानी क्यों नहीं है?
ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसको दो भावों से पूजा की जाती है। कई भक्त सोचते हैं श्रीनाथ जी उसमें राधा रानी भी गिनी हुई है, और कई की सोचते हैं ये उनकी बाल लीला है। दोनों है।
और महाराज श्रीमद भागवत में श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? वहां पर सिर्फ आराधना करके उनका नाम है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है, इनडायरेक्टली है। श्रीमती राधा रानी का नाम श्रीमद भागवतम में क्यों नहीं है, जबकि कुछ लोग उसको राधा भागवत भी कहते हैं लेकिन राधा रानी का नाम नहीं है?
क्योंकि अगर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की चर्चा करते तो उन्हें भक्ति भाव इतना था कि वो आगे शायद काम पूरी रचना कर नहीं पाते थे, और श्रीमती राधा रानी का आराधना शब्द द्वारा वही संदेश प्रकट हुआ है।
महाराज, ब्रह्मचारी लोग अलग अलग रंग के गेरवे कपड़े पहन के क्यों घूमते हैं?
अलग अलग
ब्रह्मचारियों के जो गेरवे कलर भी हैं वो भी अलग अलग रंग के हैं, तो ब्रह्मचारियों को एक ही तरह का गेरवा रंग पहनना चाहिए, इतने फैशनेबल क्यों है?
कहते हैं variety is the spice of life. असल में एक स्टैंडर्डाइज रंग होना चाहिए, पर समस्या यह है कि हम इन कपड़ों को रंग भी करो धोने के बाद रंग निकलते जाता है. तो बिल्कुल एक ही रंग रखने के लिए हर हफ्ते ब्रह्मचारी को नए कपड़े देने पड़ेंगे. पर हम सब ने सोचा है कई बार बिल्कुल एक होना चाहिए, पर इतना आसान नहीं है. ओके
महाराज, यहाँ एक चीज है कि पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी को माया का स्वाद लेने में गोल्ड मेडल प्राप्त है. तो उसको भक्त बनाने के लिए क्या मुझको टीवी देखना, मूवी जाना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
I think take on serious questions.
There's someone who's struggling with his wife. Maharaj.
केस जरा इंडिविजुअल है. तो जैसे एक ही दवाई हर मरीज को नहीं दी जाती, तो हर एक केस इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ेगा. पर हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम उन कार्यों को स्वीकार करें जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति के लिए अनुकूल है, उनको त्यागें जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है. ये है गाइडलाइन. Accept what is favorable, reject what is unfavorable. इस गाइडलाइन को लेकर अब हर समस्या का हल कर सकते हो. शास्त्र में गाइडलाइन है, बाकी जो हर केस है वो अलग होता है.
मैं यहाँ बताया जा रहा है कि of course we should take our services very seriously, but we tend to take our services very casually. Casual attitude leads to casualty, but yet we take our services casually. How to avoid this?
Hindi is necessary.
हम जो है अपनी सेवाओं को हमें गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी सेवाओं को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, उनको हल्का ले लेते हैं. तो ये हल्का लेने की जो सेवाओं के प्रति हमारी प्रवृत्ति है, इसको कैसे जीता जाए?
हमें कोई भक्ति संबंधित कोई कार्य को हल्के रूप से नहीं लेना चाहिए. चनक पंडित कहते हैं एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से वापस नहीं ला सकोगे. और भक्ति की जो शिक्षा है गंभीरता से लेनी चाहिए. और हम देख सकते हैं कि जो शास्त्र का उपदेश है सत्य है. दिन ब दिन क्लेश बढ़ते जा रहा है समाज में या घट रहा है? चिंता तनाव बढ़ रही है या घट रही है? अभी आपने अमेरिका में एक पागल आदमी राष्ट्रपति बन गया है. तो विश्व की स्थिति बिगड़ते जा रही है तेजी के साथ. कुछ पता नहीं कब युद्ध हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए एक ही उपाय है.
Just how to realize knowledge? Just to realize knowledge, is reading books sufficient? क्या किताबों को पढ़ लेंगे और इसी से हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा?
कपिला देव भगवान कहते हैं दो चीजों की आवश्यकता है, नॉलेज एंड रिनंसिएशन, ज्ञान और वैराग्य. तो ज्ञान हम अनुकूल करते हैं शास्त्र को पढ़ने से सुनने से, प्रोफेस का पालन भी करना चाहिए. वैराग्य, वैराग्य का भाव उत्पन्न करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है. तो शास्त्र में जो पढ़ते हो उसका पालन भी करना चाहिए. उदाहरण के लिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है हमें हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए. ये नहीं जैसे कहते हैं मुंह में राम राम,
बगल में छुरी,
आगे क्या है,
बगल में छुरी,
बगल में छुरी। ये नहीं किया हम लोगों को दिखावा करें, हम बड़े संत हैं और हर चीज में चापलूसी कर रहे हैं, ये नहीं। What was the question?
Yes, Maharaj. हरिनाम की हम लोग इतनी महिमा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मन इतना जिद्दी है कि फिर भी हरिनाम में मन नहीं लग पाता, तो अपने मन को हरिनाम में भला कैसे लगाएं?
भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु कहते थे मन के विषय में, रोज सुबह जब आप जागो जूता लेकर 100 बार मारो, रोज रात को जब सोने जाओ झाड़ू लेकर 100 बार मारो। तो आप ये करोगे सबके सिर में पट्टियां पड़ जाएंगे, 9 लाख किलो कहेंगे ये तो बड़ी खतरनाक संस्था है। तो झाड़ू मारने के झाड़ू से मारने और जूते से मारने के बजाय अपने मन को कहो रोज सुबह आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, रात को भी यही कहो आई एम नॉट लिसन टू यू, एक बार नहीं 100 दफा। और प्रयास करोगे सो गॉड विल हेल्प। इंग्लिश में क्या कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज
हू हेल्प देमसेल्व्स।
भगवान किनका सहयोग देते हैं, तो स्वयं प्रयास करते हैं। तो प्रयास कीजिए माया से बचने का और नियमों का पालन करो, भगवान अवश्य के सहयोग देंगे।
Maharaj, I humbly request you to please tell me how we can become free from the offenses unto your lotus feet. हम लोग किस प्रकार से आपके चरणों के प्रति अपराध करने से बच सकें?
Don't worry about offenses at my feet. Translate.
ठीक है Maharaj. So इसे Maharaj कह रहे हैं कि मेरे चरणों के प्रति अपराध करने की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरों के प्रति अपराध मत करो।
लेकिन किसी और के प्रति अपराध मत करो।
चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध से बचने के लिए काफी बल दिया। पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मी देखो न भानो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा भाई भक्ति लता बीज अनेक योनियों के पास पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है इसे भक्ति का बीज मिलता है। इसका अर्थ है ये ज्ञान कि भक्ति योग ही एक माध्यम है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। और आरंभ में आप सबने कहा था आप सब भगवत प्रेम अनुकूल करना चाहते हो, तो महाप्रभु ने कहा ये भक्ति का बीज होगेगा अगर आप क्या करोगे, क्या करोगे, श्रवण और कीर्तन नाम हरि नाम जैसे बीज उगता है पानी पिलाने से भक्ति का बीज उगेगा श्रवणम और कीर्तनम से। आगे महाप्रभु ने कहा सावधान रहना कि पड़ोस के पशु वगैरह आकर आपके बगीचे को खराब नहीं कर दें। तो आप दीवार बनाते हो ना, आपके घरों के आगे दीवार होती है, तो उन्होंने कहा हमेशा हमें अपने आप को भक्तों के संग में रखना चाहिए कि भक्ति का बगीचा खराब नहीं हो, कोई गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए। फिर आगे उन्होंने कहा पर ये सुंदर बगीचा नष्ट हो जाएगा अगर एक पागल हाथी को अंदर आने दो। तो पागल हाथी से उनका भाव था अर्थ था वैष्णव अपराध के द्वारा। और वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। अनेक प्रकार के अपराध हैं, सेवा अपराध जैसे जो भगवान के आर्च विग्रह की पूजा करते हैं उसमें कई नियमों का वर्णन है, उस अपराध से बचना चाहिए। गुरु अपराध, हरि नाम अपराध और वैष्णव अपराध। और चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय में अपनी माँ का उदाहरण दिया। सच्ची माता भगवान की माता थी, उनके मन में थोड़ा क्रोध था अद्वैताचार्य के प्रति. उनका बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया था और छोटे बेटे ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था. तो कई लोग कहते थे भक्त महाप्रभु से, अब सबको दया दे रहे हो, माता को दया क्यों नहीं दे रहे. भगवान कहते थे क्योंकि मेरी माता ने अपराध किया है. और जब लोग कहते थे अद्वैताचार्य को कि सच्ची माता ने अपराध किया है, वो कहते थे कैसे संभव है, वो तो भगवान की माता है. पर एक दिन जब अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे थे, सच्ची माता पीछे से आकर गिरचरणों की धूल ले लिया अपने माथे पर. मुझे भगवान ने ये देखा था, फिर कहा आप मेरी माता आपको भगवत प्रेम प्राप्त होगा. महाप्रभु इस उदाहरण इस घटना से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि माँ भी हो वो अपराध करे उससे अपराधों से बचना चाहिए. तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध से बचें. वैष्णव अपराध का एक कारण होता है ईर्ष्या द्वेष. हम सोचते हैं इस भक्त में ये योग्यता है, ये सुविधा है, हमारे में क्यों नहीं है ये सुविधा. तो ईर्ष्या द्वेष के कारण वैष्णव अपराध हम करते हैं अक्सर. तो ईर्ष्या द्वेष से हमें बचना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु और ज्ञान के सहयोग से ईर्ष्या द्वेष से आप बच सकते हो.
थैंक यू महाराज. महाराज यहाँ पर एक सवाल है कि कुछ ऐसे काउंसलर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि मेरी इकलौती शरण में आओ, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा. और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग जगह गड्ढा खोद करके पानी नहीं मिलता, एक जगह गड्ढा खोद करके पानी मिलता है, तो तुम्हें तुम्हें सिर्फ इकलौती मेरी शरण में आना चाहिए, सिर्फ मेरे प्रवचन सुनने चाहिए, मेरा कीर्तन सुनना चाहिए, मेरे दर्शन करने चाहिए, सिर्फ मेरे चरण छूने चाहिए, और इस प्रकार से तुमको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी. तो अगर ऐसा कोई काउंसलर हो तो उस काउंसलर के साथ क्या करना चाहिए?
मेरे ख्याल से मंगलीला ने प्रश्न में थोड़ा मसाला भर दिया. मेरे ख्याल से ऐसा काउंसलर होगा तो नहीं. नहीं, काउंसलर का प्रयास रहता है कि आपको शिक्षा दे, पर अगर आप किसी और काउंसलर को मिलना चाहो तो उनकी सलाह ले सकते हो. पर एक दोष हमारे में ये भी रहता है हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कोई हमें कुछ सुधार की शिक्षा दे. ये एक और समस्या है कलयुग में, हम सब आध्यात्मिक स्वतंत्रता चाहते हैं. तो कई बार हम काउंसलर में दोष निकालते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि काउंसलर में दोष नहीं है या हम सब में दोष की संभावना है, पर कई बार हम कुछ सुनना नहीं चाहते सुधार. और कई बार हम ढूंढते हैं कौन हमारे मायाग में साथ देगा हमें. ये भी एक समस्या है. काउंसलर सिस्टम तो अच्छा है, पर समस्या ये है कि कई बार हमें कोई शिक्षा नहीं चाहिए.
थैंक यू गुरु महाराज. गुरु महाराज एक सवाल ये भी है कि अगर कोई भक्त कीर्तन करते समय अष्ट सात्विक भाव में आ जाए और उस भाव का वो अनुभव कर रहा है, लेकिन तभी उसको एक भक्त ने कहा कि सेवा कर लो, तो उसको अष्ट सात्विक विकारों का आनंद लेना चाहिए या सेवा करनी चाहिए?
कई भक्त ये सोचे कि अष्ट सात्विक का भाव आ गया है, ये भी एक भारी भूल है. एक दिन आ सकता है, इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी. तो सेवा से बचने के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि हम बड़े ऊंचे कोटि के भाव में हैं, हम समाधि में हैं। प्रभुपाद जी ने समाधि के विषय में कहा, वर्क नाउ समाधि लेटर। आज अब हरि नाम करते हो तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो कि वर्क के मुझे सेवा दो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें सेवा भी करनी चाहिए, ये नहीं कि सेवा के वक्त हम बीमार हो जाएं और प्रसाद के वक्त ठीक हो जाएं।
थैंक यू महाराज। भाई एक सवाल यह है कि अगर कोई भक्त बड़ी बड़ी सेवाएं करता है और वो अपने गुरु को नजर भी आती है उनके गुरु को, लेकिन कोई ऐसा भक्त है जिसमें इतने गुण ना हो कि वो बड़ी बड़ी सेवाएं कर सके, तो क्या गुरु उसकी सेवा को पहचानते हैं?
बड़ी या छोटी सेवा में कोई अंतर नहीं है, सेवा का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि केवल बड़ी, असली बात यह है योग्यता के अनुसार सेवा करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पत्ता और जल भी अर्पण कर सकते हो। अगर मान लो आप में योग्यता है ज्यादा सेवा करने की, राम भगवान को कहो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये इसलिए कहा है, अगर तुम्हें और कोई करने की संभावना नहीं है तो पत्ता भी मुझे अर्पण करोगे प्रेम से तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो भगवान सेवा लेते हैं योग्यता के अनुसार, और जितनी सेवा करोगे यही आपके साथ रहेगी, बाकी सब यहाँ ही रह जाएगा।
थैंक यू गुरु महाराज। महाराज एक बात का पूछना यह है कि जब जब गुरुदेव आते हैं जैसे आप आते हैं तो फिर हम बड़े उत्साही हो जाते हैं और हम क्लास भी सुनने के लिए आते हैं और दिखाते हैं, हम अपना चेहरा आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए महाराज हम आ गए हैं, लेकिन जब आप नहीं होते तो हम फिर से जो है अपनी कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं और तब निकलते हैं जब आप आते हैं ये दिखाने के लिए, तो ये कपट की भावना हम कैसे त्यागें?
वापु और वाणी दोनों ही आवश्यक हैं। प्रभुपाद जी कहते थे वाणी वापू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वापू का मतलब है गुरु की संगत, वाणी का अर्थ है गुरु के आदेश का पालन। जब हम गुरु के आदेश का पालन की चर्चा करते हैं उसका अर्थ है भगवान के पालन, आदेश का पालन। आखिर गुरु क्या कहता है, सर्वधर्म धर्मां परित्यज्य मार्ग में गम चुनाव, हम तो हम सब पापी भयो मोक्षयामि मां सचा, सब धर्मों को छोड़कर कृष्ण भगवान के शरण में आओ। तो अगर गुरु यही संदेश दे रहा है तो उनके उपदेश में, भगवान के उपदेश में कोई अंतर नहीं। जब हम कहते हैं गुरु का उपदेश, वसन में है भगवान का उपदेश। गुरु जो कहे हरि नाम का उच्चारण करो, ये भगवान का उपदेश। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दोनों आवश्यक हैं पर वाणी ज्यादा आवश्यक है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद को अपने गुरु महाराज को अर्पण करते हैं और कहते हैं He lives forever by divine instructions and the follower lives with him। मैं जो गुरु है जीवित रहता है अपनी वाणी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, वह शिष्य हमेशा उनके साथ रहता है। प्रभु जी कहते थे आई नेवर फॉरगेट माई गुरु फॉर वन सेकेंड। तो वापुर वाणी दोनों में वाणी ज्यादा आवश्यक है। वाणी का पालन करो, जाप करो, सेवा करो, प्रभु जी के ग्रंथों को पढ़ो।
थैंक यू महाराज। महाराज व्हाट आर योर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर फीमेल डिसाइपल्स इन जनरल, जो माताएं आपकी शिष्य हैं उनके प्रति आपका कोई इंस्ट्रक्शन? महाराज
फीमेल और मेल वी डोंट डिस्क्रिमिनेट, इंस्ट्रक्शंस आर द सेम। chant Hare Krishna, get attached to the holy name, develop humility, develop mood of service, and be engaged in Krishna Bhakti all the time.
Thank you, Mahārāj.
So always remember Krishna. Never
forget Krishna.
Bhakti Rasamrita Sindhu mein Rupa Goswami ji ne anek niyamon ki charcha ki hai. Ye jo Bhakti Rasamrita Sindhu granth hai, bahut hi mahatvapurna hai. Par ant mein Rupa Goswami ji kehte hain, in sab niyamon ka ek hi mool uddeshya hai. Sada Krishna ka smaran karo aur kabhi क्या कृष्ण को भूलो मत. तो ये है, चाहे आप पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के. असल में हम सब स्त्री हैं, स्त्री पुरुष केवल भगवान है. तो चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, हमारा भाव होना चाहिए कि हम सदा भगवान का स्मरण करें, कभी भूले नहीं.
थैंक यू महाराज. महाराज, भौतिक इच्छाएं कहां पर होती हैं? आत्मा में जो कि सच्चित आनंद है, या शरीर में? यदि शरीर में, लेकिन शरीर तो मृत होता है, तो भला भौतिक इच्छाओं का स्थान क्या है?
भौतिक इच्छाओं का स्थान है मन, बुद्धि, इंद्रियां. ये है निवास का स्थान.
थैंक यू महाराज.
मन द्वारा हम भौतिक सुख का स्मरण कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं इन भौतिक इच्छाओं को सफल बनाने के लिए, और इंद्रियों के द्वारा इनको प्राप्त करने का इनके प्रति आकर्षण बढ़ता है. इसलिए भगवान गीता के तीसरे अध्याय में कहते हैं, ज्ञान के तलवार से इस शत्रु का वध करो. दूसरे शब्द में, ज्ञान के तलवार से, ज्ञान के सहयोग से मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, प्रयास करो. इंग्लिश में कहावत है, ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट. नहीं जानते आप सब हिंदी स्कूल में पढ़े हो शायद. ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट. नोबडी नोज दैट. इंग्लिश में कहावत है, try and try again, you'll succeed at last. तो प्रयास करते जाओ तो अंत में सफलता जरूर प्राप्त होगी. प्रयास ही नहीं करोगे तो सफलता कैसे प्राप्त होगी?
Thank you, Maharaj.
Just take two or three more. I want Sri Ram to speak few minutes.
Okay, Guru Maharaj. Guru Maharaj, मुगलों ने जो है कई मंदिर तोड़े, और जो होता है भगवान की इच्छा से होता है. तो क्या मंदिरों को तोड़ना भगवान की इच्छा थी?
अच्छा प्रश्न है. मुगलों ने मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया और कई मंदिरों को तोड़ा, पर आज स्थिति ऐसी है कि आप कुछ भी छोटी भी चीज करोगे तो तूफान आ जाता है इंडिया में. कोई ये चर्चा नहीं करता कितने मंदिर औरंगजेब ने तोड़े. तो एक रूप से भगवान ने हम सबको छूट दी हुई है, इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं दुरुपयोग, और मुसलमानों ने इसका दुरुपयोग किया. दूसरी तरफ से जैसे माधवेंद्रपुरी की कथा की चर्चा की, श्री गोपाल जी की स्थापना हुई थी वज्र द्वारा, फिर गोपाल जी को बचाने के लिए गोवर्धन से ले गए आगरा, आगरा से मेवाड़, फिर अंत में भगवान यहाँ पहुंचे राजस्थान में. उन दिनों में हिंदू राज्य था. तो भगवान जो है अपनी सुरक्षा तो खुद भी कर सकते हैं, पर भगवान भक्तों को मौका देते हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए. तो भगवान ने भक्तों को मौका दिया उनको. भगवान कहते हैं बचाओ मुझे, तो भक्त प्रयास कर दे भगवान को बचाने के लिए। तो ये भक्तों को भगवान मौका दे दे रहे हैं, जैसे कई मूर्तियों को बचाकर जयपुर ले आए थे, तो भगवान भक्तों को मौका देते हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। भगवान को तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, ओम पूर्णमादाम पूर्णमेदाम यीशु परिषद में क्या है, भगवान तो हर रूप से कंप्लीट है, पर हमें सेवा का मौका देते हैं। जैसे भगवान चाहें तो आप सबको एक मिनट में भक्त बना सकते हैं, भगवान चाहें तो पूरे देश को भक्त बना सकते हैं, पर भगवान चाहते हैं नहीं, मेरे भक्त प्रयास करके भक्त बनाए। फिर भगवान जब देखते हैं मेरे भक्त प्रयास कर रहे हैं, फिर भगवान उन्हें बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो सफलता से सेवा को निभा सके। तो मुसलमानों ने दुरुपयोग किया है, अभी क्या कर सकते हो, कलयुग में ये सब चीजों की उम्मीद आप कर सकते हो, पर भगवान भक्तों को मौका देते हैं ज्यादा सावधान रहें और उनकी सेवा में जुड़े।
थैंक यू गुरु महाराज। गुरुमाराज एक भक्त है जो कि पूछ रहे हैं कि इनको ही स्ट्रगलिंग विद द एटीट्यूड ऑफ बीइंग जजमेंटल एंड फॉल्ट फाइंडिंग, दोष देखना और जज करना इसका जो है उनको फितूर सवार है। तो चाहे कोई प्रवचन दे रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मैनेजमेंट कर रहा हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सब कुछ जज करना चाहते हैं, दोष देखना चाहते हैं, तो ये जज करना और ये दोष निकालने के पागलपन से कैसे बचे?
सबकी समस्या है ये, सबकी समस्या ही है। दोष निकालने में सबके पास पीएचडी डिग्री है, हम सब एक किताब लिख सकते हैं इन दोषों की। इसमें ये दोष कई बार भक्त मिलते हैं जो केवल दोषों की चर्चा करते हैं। तो इस अपराध से बचने के लिए प्रभुपाद ने कहा गुणों को देखो, बी लाइक द बी नॉट लाइक अ फ्लाई। मधुमक्खी जो है साफ स्थानों में रहती है, मधु लेती है, और जो मक्खी है उसका क्या भाव रहता है, गंदे स्थान में। तो प्रयास करो भक्तों के गुणों को देखने के लिए, कम से कम वो हरि नाम तो ले रहा है, कम से कम भगवान की सेवा तो कर रहा है, पर हमारे में क्या भाव रहता है। हम सब हमारे गुणों को तो बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 times, दूसरों के गुणों को डिवाइड कर देते हैं 100 times, तो दूसरा व्यक्ति छोटा बन जाता है, आप इन्हें बड़े बन जाते हैं, ठीक है ना। दूसरों के गुणों को देखो, और हमारे में भाव होना चाहिए सेवा का। भगवान ये नहीं देखते कौन बड़ी सेवा कर रहा है, कौन छोटी सेवा कर रहा है, भगवान ये भी देखते हैं विनम्रता का भाव। भगवान के शरणागत होने के 6 नियम हैं। एक है जो अनुकूल है स्वीकार करो, प्रतिकूल है त्यागो, फिर उसमें 6ठा है विनम्रता का भाव। तो हम सब में अगर विनम्रता का भाव हो तो फिर आप नुक्स देखोगे ही नहीं, अगर हम सब में सेवा का भाव हो फिर आप में गुण भी होंगे। ये नहीं कि हमें केवल गुरु की सेवा करनी और किसी और की नहीं, सब वैष्णव की सेवा करने का भाव होना चाहिए, सब संतों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। हमें सबका दास बनना है, स्वामी नहीं। समस्या यह है हम सब स्वामी बनना चाहते हैं, हम सब हुक्म चलाना चाहते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते। तो कृष्णनाथ काविराज का देखो उदाहरण दिया था सुबह, ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं प्रसिद्ध भक्तों के जिनमें केवल सेवा भाव था। तो ये सेवा भाव और चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत में इस पर खास बल दिया गया है, सेवा भाव होना चाहिए सबके प्रति, सेवा भाव। ये नहीं कि हमें बड़ी सेवा चाहिए, आपको अगर तुच्छ सेवा भी दे दे झाड़ू मारो, बर्तन साफ करो, हमें खुश होना चाहिए। चेतन चतुर्विध में हम एक कथा पढ़ते हो गुंडीचा मार्जनम की, गुंडीचा महाराज नदुमना की पत्नी का नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों ने सबने मिलकर रथ यात्रा से पहले मंदिर की सफाई की। महाप्रभु भी स्वयं रगड़ रहे थे छत को, दीवारों को, फर्श को, और महाप्रभु देख रहे थे कौन कितनी मिट्टी निकाल रहा है, और जो ज्यादा निकालता था उसे कहते थे दूसरों को शिक्षा दो कि वो भी ज्यादा बढ़ाए। तो भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं ये जो सफाई की सेवा है मंदिर की, इसकी तुलना करते हैं हृदय की सफाई के साथ। मंदिर को हम जब साफ करते हैं तो अपने हृदय को साफ कर रहे हैं। तो जब हम सेवा करते हैं, सेवा के माध्यम से अपने हृदय को साफ कर रहे हैं। तो चाहे आप मंदिर में जाओ इतवार को, बाकी समय नौकरी कर रहे हो, तो जब मंदिर जाओ मेहमान के रूप में मत जाओ, इस भाव से जाओ हम सेवा करने आए हैं, और सेवा करो भक्तों की। चाहे दूसरा व्यक्ति सेवा नहीं करे, आप अपनी तरह से ठीक करो। कई बार हमारा सिद्धांत रहता है नेले पे देला, टिट फॉर टैट, रशियन में कहते हैं जू और जूब, टूथ फॉर अ टूथ। तो महाप्रभु ने इस विषय में कहा है दूसरों को आदर दो बिना किसी क्या अमानी न मना देना, आदर की उम्मीद रखे हुए। महाप्रभु ने कहा है, महाप्रभु के जो 8 श्लोक हैं शिक्षाचर के नाम से, उनमें पूरे वैदिक शास्त्रों का सार प्राप्त है। महाप्रभु कहते हैं आदर दो पर आदर की उम्मीद के बिना, निर्णय पे देना का भाव मत करो। ओके,
थैंक यू महाराज। एक सवाल यह है कि जब दीक्षा हुई थी तो उस वक्त 16 माला और 4 नियम का मैंने वचन लिया था, और सनत कुमार संहिता मैंने पढ़ा कि यदि कोई इस वचन का उल्लंघन करता है तो दीक्षा कैंसिल हो जाती है, लेकिन मैं नियम तोड़ चुका हूं, तो क्या मेरी दीक्षा कैंसिल हो चुकी है?
ये असली प्रश्न है कि बनाया हुआ प्रश्न? असली प्रश्न है। दीक्षा कैंसिल तो नहीं, गुरु अपनी तरफ से कभी कैंसिल नहीं करता। ये था प्रभा जी का कहना, पर अगर शिष्य कैंसिल करना चाहे तो वो नियमों का पालन नहीं कर रहे तो शिष्य कैंसिल कर रहा है। प्रयास करना चाहिए कि हम नियमों का पालन करें। इसलिए कई संस्थाओं में दीक्षा 1 मिनट में मिल जाती है। आप जाओ और बाहर आओगे नए आध्यात्मिक नाम के साथ। पर इसको मैं दीक्षा से पहले कम से कम 2 साल 16 माला करना पड़ता है और परीक्षा लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे दीक्षा से पहले हम समझें क्या है हमारी जिम्मेदारी। ये नहीं कि 1 दिन में दीक्षा मिल जाती है। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए ईमानदार रहने के लिए। ओके,
गुरु महाराज एक सवाल है कि अगर गुरु करुणा सिंधु हो, यानी कि उन्होंने करुणा की सारी सीमाएं पार कर दी हो, लेकिन शिष्य ने कपट करने की सारी सीमाएं पार कर दी हो, तो कृष्ण ऐसे शिष्य का क्या हाल करते हैं?
भगवान भगवान गीता में क्या कहते हैं, ये है तमाम प्रबोधन दे, जितनी शरण माता में कोई मेरी शरण में आएगा उतनी मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। तो वैपारिक भाषा में क्या कहते हो, जैसा दाम भरोगे वैसा क्या, तो आप 1% प्रतिशत भगवान के शरणागत हो गए तो 1% सुरक्षा मिलेगी। जितना आप प्रीमियम भरते हो उसके आधार पर कवरेज मिलती है ना, ये नहीं कि एक ही प्रीमियम भरो और सबको एक बराबर की इंश्योरेंस। तो जितनी ये मत भूलो, जितना आप भगवान के शरणागत होने के लिए प्रयास करोगे, जितना आप त्यागोगे उतनी सुरक्षा भी प्राप्त होगी। भगवान हर चीज के साक्षी हैं, वो हर चीज को देख रहे हैं। ओके, एक या दो क्वेश्चन और।
आज 3 साल बाद व्यास आपकी व्यास पूजा की 75th एनिवर्सरी प्लैटिनम जुबली होगी, तो उस वक्त हम आपको क्या भेंट दे सकते हैं?
उस वक्त आज एक ही भेंट दो, इसको वो भेंट ये है, हरि नाम में रुचि बढ़ाओ, प्रभुपाद जी के ग्रंथ में आज कल 20 साल बाद एक ही भेंट है, हरि नाम में रुचि बढ़ाओ और अच्छे भक्त बनो, कपट चापलूसी से बचो, ठीक है ना? ओके, फिनिश। Take one or two more.
Okay, Maharaj. In case there is a conflict between immediate authority and the higher authority, to is conflict mein se kaise bacha jaye?
Go to the higher authority.
For example, say kisi ke counselor and temple president, or say temple president and guru and GBC, something like that.
Well, conflict होना तो नहीं चाहिए। काउंसलर भी ये कहेगा हरि नाम में रुचि बढ़ाओ, प्रेजिडेंट भी वही कहेगा, गुरु भी वही कहेगा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई कुछ और संदेश दे रहा है फिर प्रॉब्लम है।
महाराज एक सवाल यह है कि भगवान के आगे भौतिक इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन जब नहीं मांगते तो भौतिक इच्छाएं सर में घूमती रहती हैं, और जिस तरह से हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाते, तो
आप अगर नहीं भी मांगो भगवान आपकी भौतिक इच्छाओं को समझ लेते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम सुदामा ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, तुम्हारा धनी मित्र है ना द्वारका में, उसे जाकर मिलो। सुदामा ब्राह्मण गरीब थे, एक ही धोती थी, ब्राह्मण अक्सर जैसे मैंने सुबह कहा गरीब होते हैं। खैर, पति के कहने पर सीधा ब्राह्मण गए द्वारका और भगवान ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया, बचपन की लीलाओं का चर्चा की, तो कुछ मांगे बिना वो लौट गए। रास्ते में यही सोच रहे थे कि हाँ कहूंगा अपनी पत्नी से, तो भगवान समझ गए थे किस इच्छा से वो आया था। तो भगवान ने क्या किया, जब वो लौटे तो क्या देखा उन्होंने, उनकी साधारण कुटिया महल बन गई थी। तो आप कहोगे तो हमारी भी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, हम सब जब श्रीनाथ जी से लौटेंगे तो हमारी कुटिया भी केवल महल बन जाएगी। हमारे लिए महल नहीं बनेगी, क्योंकि भगवान को पता था अगर सुदामा ब्राह्मण को महल दिया तो भी माया में नहीं गिरेंगे। हमें भगवान ज्यादा सुविधा जानबूझकर नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ज्यादा सुविधा देंगे सब माया में गिर जाएंगे। जैसे आप लोग ग्रंथों के वितरण की सेवा करते हो, अगर हमारी इच्छा तो ये रहती है कि हम जब बाहर जाएं सभी लाइन में खड़े हो जाएं और लड़े कि हमें ग्रंथ चाहिए। तो अगर ग्रंथों का वितरण की सेवा इतनी सरल बन जाए तो हमें माया में गिर जाएंगे। तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, गहराई के साथ भगवान का चिंतन करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। प्रभुपाद जी को आदेश मिला था 1922 में, ले जाओ इस संदेश को पश्चिम देश में, प्रभुपाद जी को भी 40 साल प्रयास करना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जब अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया नर्मदे में, कईयों ने विरोध किया। एक तो मुसलमानों ने विरोध किया, मुसलमानों ने कहा कि अगर तुम हम निमाय किए संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। वो एक मुसलमान था जो बार बार काजी से शिकायत करता था, रोको रोको निमाय के हरि नाम को। तो काजी ने कहा तुम दिन रात आते हो मुझे बोलते हो रोको रोको रोको, और मैं जब भी तुम्हें देखता हूं, मैं देखता हूं तुम हरि नाम का जाप कर रहे हो, ये क्या? एक तरफ से शिकायत करते हो, दूसरी तरफ से हरि नाम का उच्चारण। उसने कहा कि ये बात सच है, जब से मैंने हरि नाम सुना है हरि नाम मेरी जीभ से निकलता ही नहीं। तो एक तरफ से तो मुसलमानों ने विरोध किया, तो दूसरी तरफ से हिंदू स्मार्ता ब्राह्मण्स ने भी विरोध किया क्योंकि उनकी आमदन घटने लग गई थी। उन्होंने कहा क्या निमाय ने नया धर्म पैदा कर दिया है, ये कहाँ है हमारे शास्त्र में? तो जब चैतन्य महाप्रभु भी प्रचार कर रहे थे जो स्वयं भगवान है, कईयों ने उनका विरोध किया। तो जब आप भगवान के सेवा में जुड़ते हो हमें जितना हो सके प्रयास करना चाहिए, और अगर कठिनाई भी सामने आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। जैसे कुंती मनानी कहती हैं कष्टों को बढ़ाओ भगवान, क्योंकि जितना कष्ट को बढ़ाते हो उतने गहराई से मैं आपके चरणों का स्मरण करती हूँ।
महाराज अक्सर भक्त जो है तन से सेवा करना चाहते हैं और मन से भी सेवा करना चाहते हैं लेकिन धन से सेवा नहीं करना चाहते महाराज। तो अक्सर हमारा मन रहता है कि सारी सैलरी अपने खुद पे खर्च कर दें लेकिन भगवान को एक पैसा ना दें।
धन तो हमारे साथ जाएगा ना, बाकी सब यहीं रहेगा, सिर्फ आपके रुपए आपके साथ जाएंगे।
वहां गृहस्थों के लिए चैरिटी के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? शुड दे गिव 10%, 15%, 20%? क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनके?
हमारे सामने रूपा गोस्वामी का उदाहरण है, जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे पूरी नाव भर गई थी, और उन्होंने आधी संपत्ति बांटी ब्राह्मणों को। खैर महंगाई के जमाने में 50% हर व्यक्ति तो नहीं कर सका। मैं कईयों को जानता हूं जो कर रहे हैं, पर जितना हो सके उतना तो कीजिए, 50 नहीं तो 10, पर कुछ तो कीजिए। अगर सचमुच नहीं कर सकते तो अलग बात है। भगवान तो हर चीज के साक्षी हैं। प्रभुपाद जी ने कहा God doesn't see what you give, God sees what you keep। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान हर चीज के साक्षी हैं। भगवान ये नहीं देखते आपने क्या दिया, भगवान ये देखते हैं तुमने अपने लिए क्या रखा है। ठीक है ना, इनकम टैक्स वालों को तो आप धोखा दे सकते हो अगर अच्छा वकील हो आपके पास, भगवान को तो धोखा नहीं दे सकते। ओके, वन आर टू क्वेश्चन देन वी स्टॉप।
एज यू डिजायर महाराज,
एज यू हैव मोर क्वेश्चन,
वी हैव मेनी,
टेक वन आर टू मोर।
महाराज कालियानाग के को भगवान की चरण रज प्राप्त हुई जबकि वो इतने पापी थे, उनमें इतना जहर भरा था, लेकिन हमको चरण रज क्यों नहीं प्राप्त होती? हम कालिया से तो कम पापी हैं।
ये जो कृष्णा लीला में जो असुर हैं, ये असुर कोई साधारण असुर नहीं थे, ये सब भगवान के भक्त हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु, वैसे पूछा जाए किसी से क्या हिरण्यकश्यपु का परिचय, वो कहेंगे क्या कहोगे बिठाने का, जो क्या है उनका परिचय, डीमन। पर जय विजय को श्राप दिया तो बहुत है भक्त, तो ये जो असुर हैं कालिया हुए ये सब भगवान के भक्त हैं, उनके हुड्स में भगवान नाच रहे थे, ये कोई छोटा किसी उनकी हम तुलना भी नहीं कर सकते। और ठाकुर भक्ति विनोद एक ग्रंथ में अनेक असुरों की लीलाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार इन लीलाओं के विषय में सुनकर आपकी अलग अलग अनर्था दूर होंगे।
थैंक गुरु महाराज। तुम्हारा एक सवाल यह है कि हमको पढ़ने लिखने की कभी आदत रही नहीं है, स्कूल टाइम में भी हम 10 साल के गेस्ट पेपर पढ़कर ही पास हुए थे, तो अब जब भक्ति में आए हैं तो हमें ग्रंथ देख करके डर लगता है, पढ़ना तो दूर की बात, हम ग्रंथ को साफ भी नहीं कर पाते,
साफ
उसके ऊपर धूल जमी होती है महाराज।
क्या
ग्रंथों के ऊपर धूल जमी होती है, तो उस धूल को साफ करने का समय नहीं होता, उसको खोल करके पढ़ना और दिमाग में डालना वो तो बहुत ही दूर की बात हो गई। तो ऐसी अगर समस्या हमारी हो तो ऐसी समस्या में हम पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू करें, पढ़ाई लिखाई के संस्कार है नहीं।
इन ग्रंथों में और भगवान में कोई अंतर नहीं, श्रीमद् भगवतम और गीता में और भगवान में। तो अगर आप धूल को देख रहे हो ग्रंथों में तो ये अपराध है। इन ग्रंथों को अच्छे साफ स्थान में रखना चाहिए, साफ तरीके से, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान की वाणी है। और ग्रंथ खरीद लिया है पर पढ़ते नहीं वो भी शोभा नहीं देता। आप में से कितने भक्त हैं जिनके पास श्रीमद् भागवतम का सेट हिंदी या अंग्रेजी में है? तो कितने भक्त हैं जिन जो कि भगवद गीता को रोज पढ़ते हैं और कितने भक्त हो जो कि श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ते हो? और रोज पढ़ते हो या सुनते हो? और कितने भक्त हैं जिनके पास घर में चैतन्य चरितमृत का सेट है? और कितने भक्त हो जो चैतन्य चरितमृत को हफ्ते में 2-3 बार पढ़ते हो कम से कम? अगली यात्रा में आपको भगवतम के सेट भी लाने चाहिए। ओके। और
गुरु महाराज एक सवाल यह है कि जब पावर पोस्ट पोजीशन के साथ सेवा आती है तो सेवा में उत्साह रहता है, लेकिन बिना पावर पोस्ट पोजीशन के सेवा का उत्साह जीरो हो जाता है, तो सेवा भावना शुद्ध कैसे करें?
हिंदी में अनुवाद कीजिए।
यस महाराज, जब तक जो है हमको कोई स्थान मिलता है, पोजीशन मिलती है, तो सेवा में उत्साह रहता है, लेकिन अगर सेवा पोस्ट पोजीशन पावर अगर नहीं होती तो सेवा में उत्साह जीरो हो जाता है, तो इस निस्वार्थ भाव से सेवा कैसे कर सकें, क्योंकि हमारी बड़ी इच्छा है कि हम भी गुरु बनेंगे, एक दिन हम भी जीवी सी बनेंगे।
चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है हमारे आगे से तुम सब गुरु बनो, मतलब सब प्रचारक बनो। तो ये भाव नहीं होना चाहिए कि केवल अगर हमें पद मिले तो ही हम सेवा करेंगे। मन में भाव होना चाहिए, चाहे भगवान कुछ भी दें तो भी आप ही मेरे स्वामी रहोगे। निष्काम भाव से सेवा करोगे तो शांति प्राप्त होगी। चैतन्य चरितमृता में एक श्लोक है इस प्रकार का, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत। जो निष्काम भाव से सेवा करेंगे वो हमेशा शांत रहेंगे। अगर आपके मन में ये भाव नहीं है हमें पद चाहिए, पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आपको चाहे झाड़ू मारने की सेवा भी दी जाए, आप शांत रहोगे। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा रथ यात्रा शुरू होने से पहले महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू मार रहे हैं जिस रास्ते पर रथ निकलने वाला है, महाप्रभु ने देखा राजा होते हुए तुच्छ सेवा कर रहा है, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान जब देखते हैं कि निष्काम भाव से हम सेवा कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जब भगवान देखते हैं सकाम भाव से सेवा करेंगे तो पहले हमारा हुक्म भी चलना चाहिए। तो भगवान कई बार सेवा दे देंगे पर इतने प्रसन्न नहीं होंगे। पर भक्ति में इतनी शक्ति है, आप सकाम भाव से भी जुड़ोगे तो निष्काम भाव पर पहुंच सकते हो। ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी इस इच्छा के साथ एक बड़ा महान राज्य प्राप्त हो, पर उनकी तपस्या के द्वारा इन्हें शुद्ध बन गए। जब भगवान ने कहा कि मांगो क्या वर चाहिए, ध्रुव ने क्या कहा, मैं टूटी हुई शीशों की खोज में था, अब मुझे हीरा मिल गया है। तो असली हीरा है निष्काम भाव की सेवा। ओके, वन मोर क्वेश्चन,
महाराज ये सवाल है कि मैं महाराज मैं कई सैकड़ों मालाएं कर चुका हूं और कई टन प्रसाद पा चुका हूं और कई बार परिक्रमा भी कर चुका हूं, लेकिन आज भी मैं पहले भी बदमाश था आज भी बदमाश हूं, मैं बदल क्यों नहीं रहा?
क्या था प्रश्न? क्या था
सवाल ये महाराज कि मैं बहुत माला कर चुका हूँ, काफी समय से माला कर रहा हूँ और कई सैकड़ों टन प्रसाद भी पा चुका हूँ, लेकिन मेरा हृदय नहीं बदल रहा महाराज। मैं पहले भी बदमाश था आज भी बदमाश नंबर वन हूँ, ये बदमाशी क्यों नहीं जारी मेरे हृदय में से?
कई बार लोग विनम्र भाव से कहते मैं बदमाश हूँ, कई बार वो असली बदमाश होते हैं। ये देखना पड़ेगा ये विनम्र भाव का बदमाश है या असली बदमाश है ना। कई बार लोगों में विनम्रता का भाव होता है। ओके, मैं जो श्री राम प्रभु हमारे गुरु भाई उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी कुछ बोले आसन दो श्री राम प्रभु। नहीं उनको कुर्सी दो
ठीक है
कुर्सी दो बाबा
ठीक है। वैसे तो टाइम महाराज जी अभी 10:15 से ऊपर हो गया है, फिर भी मैं 5 मिनट बोलने का
ना।
नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम ने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार ने, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बैठिए बैठिए श्री राम जी।
ठीक है मैं ठीक हूँ। अभी आपने बहुत सुंदर प्रवचन सुना महाराज जी से और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आंसर आपने सुने।
मेरे ख्याल क्वेश्चन पर थोड़ा मैं सारा लगा दिया।
अभी महाराज जी बैठे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके सामने बोलने का प्रयास करूंगा। महाराज जी ने अपने लेक्चर में बताया कि सब लोग खुशी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जियो के माध्यम से, गाने सुन के फिल्में देख करके, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। इस संसार में कोई भी आदमी आनंद पूर्वक रह ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई अगर मैं केवल ही बताता हूं ये बात, अगर कोई व्यक्ति जेल में है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में है, चंडीगढ़ के बुड़ेल जेल में है, या जयपुर की जेल में है, या अलवर की जेल में है, तो वो सोचे कि मैं सुखी हो जाऊं, मुझे आनंद मिले, तो ये तो हो नहीं सकता है। जेल में तो आनंद मिलता नहीं है, इस संसार में कहीं भी आनंद नहीं है, चाहे वो आप जियो खरीदो, चाहे जो मर्जी खरीद लो। हम अपने पाप कर्मों के कारण ये दुख उठाने के लिए मजबूर हैं, जबरदस्ती हमें दुख उठाने पड़ रहे हैं अपने पाप कर्मों के कारण। सबसे पहले तो हमें अपने पाप कर्म छोड़ने होंगे। प्रभुपाद जी ने जैसे बताया, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये चार पिलर हैं पाप के, इनसे हमें बचना चाहिए, तभी आनंद मिल सकता है इस भौतिक जगत में नहीं। क्यों? आनंद का मतलब है राम, राम का मतलब है सोर्स ऑफ प्लेयर, जहां से आनंद निकलता है। तो जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, आनंद नहीं मिल सकता है आपको। भगवान भी यही तो कहते हैं, पहले पाप खत्म करूंगा तुम्हारे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम हम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुच, पहले मैं तुम्हारे पाप खत्म करूंगा। और हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम नामकारी कलिकलमशनाशनम ना ते परतरो अपाय सर्वेदेषु दृश्यते। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चैतन्य महाप्रभु जी ने भी यही प्रचार किया है, जो स्वयं भगवान है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। उन्हें क्या कहा है, आनंद लेना है तो क्या करो, कीर्तनीय सदा हरि, यही बोला है। प्रभुपाद जी ने भी नहीं तो, प्रभुपाद जी तो वृंदावन में मजे से रह रहे थे, भक्ति कर रहे थे, किताबें लिख रहे थे राधा दामोदर मंदिर में, फिर उनको क्या जरूरत पड़ी कि पूरी दुनिया में जाकर के तकलीफ उठा करके जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं, भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, भागवतम का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद में वो दुखी नहीं है, बाकी लोग दुख उठा रहे हैं इसका उन्हें दुख है। तो लोगों को दुख से उभारने के लिए, पर दुख दुखी साधु, जो साधु होता है पर दुख दुखी, अपने दुख से दुख नहीं है वो, बाकी लोगों के जो लोग जो अपने दुख उठा रहे हैं, सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में, इनको कैसे उभारा जाए, इस बात को लेके ये मिशन लेकर के चैतन्य महाप्रभु जी का कहना मान के, अपने गुरु जी का कहना मान करके, वो पूरी दुनिया में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया ताकि लोग सुखी हो सके। यही एक फार्मूला है शांति प्राप्त करने का, दुखों से दूर होने का, आनंद प्राप्त करने का। केवल एकमात्र फार्मूला है, एकमात्र गुरु है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाते पर तुरवा पाए। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार यही कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो बिना अपराध के, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।
प्रभुपाद जी ने यह भी कहा, जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा और अध्ययन होगा, मैं हमेशा जीवित रहूंगा, और इन ग्रंथों के द्वारा हमें शिक्षा देते जाएंगे। जैसे आज भी आपको व्यासदेव जी की शिक्षा मिल रही है ना ग्रंथों के माध्यम से, ऐसे प्रभुपाद जी की शिक्षा इन ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त करते जाओगे। तो मैं कई भक्तों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिनके प्रयास से ये यात्रा की योजना की गई थी। हर प्रोग्राम में थोड़ी कमी तो रहेगी, तो शायद कोई टूटी हुई हो, पर भक्तों का प्रयास था कि अच्छी सेवा करें। तो हमारी एक कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे पीयूष गोयल जी का, हाँ ये उनका भाव था कि यात्रा निकाले जाए, उनको सहयोग दिया सोनक ऋषि प्रभु, शास्त्र नेत्र बुरी जान और प्रेम किशोर ने। प्रेम किशोर प्रभु इधर हैं, वो इनके मेंटोर थे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज। तो सबसे पहले इन सब का बहुत धन्यवाद, उन्होंने काफी प्रयास किया। अमोघ लीला का नाम नहीं है ना, भूल गए। अच्छा, कईयों ने सेवा की। प्रसाद प्रसाद अच्छा लगा सबको? चाहे कोई सिद्धांत से माने या नहीं, पर सब मानते हैं हरे कृष्ण प्रसाद सबसे बेहतर है। विदेशों में भी लोग आते हैं, कई लोग आते हैं मंदिर में प्रसाद खाने, प्रसाद से खींचे जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, कई भक्त हैं जो अपना प्रसाद दूसरों को दे देते हैं, कई भक्त हैं जो प्रसाद चोरी करते हैं, तो इन दोनों में कौन बेहतर है? प्रभुपाद ने कहा बोथ आर ओके। अगर आपको चोरी भी करना है तो प्रसाद केवल प्रसाद खाओ। प्रसाद हमको किंग की जिम्मेदारी थी, बुरी जान प्रभु और टीम कॉम्बिनेशन की जिम्मेदारी ली थी साधु गुणंगा प्रभु, और बस कोऑर्डिनेटर थे हरी जनार्दन प्रभु और रेवती प्रभु। पूरी लिस्ट पढ़ने की है, कितने मेन ऑर्गेनाइजर्स?
प्रेम किशोर प्रभु महाराज बुला रहे हैं आपको।
नहीं तो ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।
शौनक ऋषि प्रभु जी, प्रभु
ठीक है। और टेम्पल भक्त भक्ति भक्त रूपा बुकिंग बुरी जान प्रभु, कहीं उन्हें
हरे कृष्णा धन्यवाद देना चाहेंगे हम। सबसे पहले तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव का महाराज ने अपना समय दिया।
आगे बढ़ो।
सो लेट्स पे आवर ग्रेटिट्यूड टू महाराज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवत्पाद महाराज की जय। सो हम जो धन्यवाद देना चाहेंगे जो हम सबके मेंटोर थे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। यस महाराज नीचे महाराज। और साथ ही श्रीराम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद, प्रभु जी की प्रेजेंस ही अपने आप में आशीर्वाद है। सो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वन लाउड हरि बोल फॉर श्रीराम प्रभु जी। और कोर कमेटी में थे शौनक ऋषि प्रभु जी, पीयूष गोयल प्रभु जी।
पढ़ दिया
सर्विस हेड महाराज
ऑल द अदर सन्यासीज हू केम।
और साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे हिज होलीनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज जी का, हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी का, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का। सो वन लाउड वंस अगेन हरी बोल।
साक्षी गोपाल
और साक्षी गोपाल प्रभु जी भी हमारे साथ ही हैं, कुरुक्षेत्र से हैं प्रभु जी। सो उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी यहाँ पर आए। वन लाउड हरी बोल साक्षी गोपाल प्रभु जी।
अभी तो बाय बाय कर देगा, समय आ गया स्वागत कर दे।
हरे कृष्णा। जो सबसे बड़ा धन्यवाद है वो ये है कि ये कार्यक्रम सफल हुआ आप सबके आने से। तो आप सबका धन्यवाद कि आप सब आए यहाँ पर और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और महाराज को आपने सुना अच्छी प्रकार से और कितना अच्छे तरीके से महाराज ने आपको टेकअप किया। हालांकि महाराज की इतनी तबीयत खराब थी, गला बोलने में भी दिक्कत थी, इसके बावजूद भी आपके प्रेम की वजह से महाराज यहाँ उपस्थित हुए। तो इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम के धन्यवाद देने के उत्तरदायित्व हैं, आपकी जिम्मेदारी हम देते हैं आपको कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
सो वन लाउड हरि बोल फॉर ऑल ऑफ यू, हरि बोल।
अगर आप सब नहीं आते तो इनके लिए सेवा ही नहीं होती, तो आप सब आए तो आपने सबके लिए सेवा भी दी।
तो आज जो है आज बर्थडे भी है एक डिवोटी का, उनका नाम है सुंदर गोपाल प्रभु। तो हे भी है सुंदर गोपाल प्रभु। सो वन लाउड हरे कृष्ण महामंत्र फॉर सुंदर गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो सुंदर गोपाल प्रभु बहुत ही डायनामिक प्रीचर और इस्कॉन दिल्ली में जो यूथ फोरम उसमें जान भरी बड़े सिस्टमैटिकली प्रीचिंग लेकर आए। तो
ओके
तो सुंदर गोपाल प्रभु की खास बात यह है कि उनका स्पिरिचुअल बर्थडे भी आज के दिन होता है, यानी कि 2006 में सुंदर गोपाल प्रभु को जो है महाराज को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, तो 21 जनवरी 2006 और मैं भी उसी बैच का हिस्सा था। मेरा बड़ा सौभाग्य कि मैं सुंदर गोपाल प्रभु के बैच का हिस्सा था। सो दैट वे उनका स्पिरिचुअल बर्थडे भी आज के दिन है। सो वी प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ और इस तरह से वो प्रचार करते रहे, ढेर सारा हरिनाम ले, बहुत सारे जन्मदिन आए लेकिन उस पर जन्म ना आए, इसीलिए प्रार्थना करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव कनुगत सुंदर गोपाल प्रभु की जय। और साथ ही बुक स्टॉल भी लगा है गुरु महाराज की बुक्स का, तो जो भक्त महाराज की बुक्स जो उनके लेक्चर्स हैं ट्रांसक्राइब्ड हैं तो वो बाहर से ले सकते हैं। बहुत सुंदर बुक्स है कंपाइल की है सर्व साक्षी प्रभु जी के द्वारा और अन्य भक्तों के द्वारा, नंद गोपाल जीवन प्रभु के द्वारा। सो इट्स रिक्वेस्ट काइंडली डू हैव बुक्स ऑफ महाराज सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर लव फॉर आवर गुरुदेव। और हम सब प्रश्नों के जवाब तो नहीं दे पाए महाराज नहीं दे पाए, तो लेकिन ये है कि हम सारे सवालों को अपने पास रख रहे हैं। और ये जो ऐप लॉन्च हुई है करुणा सिंधु, तो उसमें हम जो है इस प्रयास करेंगे महाराज से हम आंसर्स लेकर के उनको पोस्ट कर सकें और फिर जो भी सवाल है उनके जवाब मिलेंगे तो सभी डिवोटीज को फायदा होगा। तो दैट इज अगर हम जिनके सवाल नहीं ले पाए प्लीज डोंट फील डिसअपॉइंटेड, उनके सवालों के जवाब हम ऐप के थ्रू दिया करेंगे, हम महाराज से बीच में पूछते रहेंगे और महाराज के जवाब को हम ट्रांसक्राइब करके इस ऐप के थ्रू आप तक भेजेंगे करुणा सिंधु ऐप। जिन जिनके पास स्मार्टफोन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिनके पास नहीं है स्मार्टफोन खरीद के डाउनलोड कर लीजिए। ओके बाहर वैसे दूध जलेबी है बट दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ अनाउंसमेंट, उससे पहले और भी कुछ अनाउंसमेंट है।
प्रभु